ओम शांति। एक छोटा सा प्रश्न है और उस पर ही आज चर्चा करेंगे। योग किन किन का अच्छा लग रहा है? हाथ उठाएंगे जिनका योग अच्छा लग रहा है। अच्छा, बहुतों का अच्छा लग रहा है। और जो बहुत अच्छे योगी बनना चाहते हैं वो भी हाथ उठा दो जरा। बचा कोई नहीं? अच्छा, बहुत अच्छी बात है। योगी आत्माएं बाबा को बहुत प्रिय हैं। क्यों प्रिय हैं बताओ? क्यों प्रिय हैं? द्वारका भाई शुरू करे, सुरेश भाई, इंद्र, सब परिवर्तन इससे होता है। और सुरेश भाई, आधार हैं, सत्य है ये बात भी। योग युक्त आत्माएं आधार हैं सृष्टि का। इंद्र प्रताप, विश्व कल्याण। हेम सिंह, योग से ही बदलते हैं। आनंद, ठहरो आज आनंद बोलेगा। भगवान को प्रिय है, वो तो हमारा फायदा है। योगी आत्माओं का चित्त शुद्ध हो जाता है, भावनाएं निर्मल हो जाती हैं, तो वही विश्व का कल्याण करते हैं। और क्योंकि वो सबके लिए बहुत सुखदायी हो जाते हैं। जो सच्चे योगी होंगे उनकी पहचान पहली होगी बहुत सुखदायी, बहुत निर्मल, और कर्मेंद्रियां शीतल होती जाएंगी, भावनाएं भी बहुत अच्छी हो जाएंगी दूसरों के लिए। ये बड़ा खराब है, ये बहुत बुरा है, ये सब नहीं, सब कैसे हैं? अच्छे से भी अच्छा शब्द बोलो, सब महान हैं। भगवान के बच्चे सभी महान हैं। आप जरा कल, आज से ये अभ्यास करके देखना कि जो भी दिखाई देते हैं वो सब महान आत्माएं हैं। ये दृष्टिकोण बदलते ही हमारी स्थिति महान बनने लगती है। जैसा हमारा दृष्टिकोण होता है, एक है दृष्टि, दूसरा दृष्टिकोण। माताएं भी समझती होंगी ना ये बात, किस नजर से हम दूसरों को देखते हैं, वैसा ही प्रभाव हमारी स्थिति पर बहुत ज्यादा उसका पड़ता है। अगर हम देखें ये बड़े खराब लोग यहाँ तो रहते हैं, वो बड़े गंदे हैं सब, तो हमारा मन भी भारी रहेगा सारा दिन, खुशी भी नहीं रहेगी, शांति भी नहीं रहेगी। तो हमें योग अभ्यास को सरल करना है। योगी बनने की सभी की इच्छा होनी ही चाहिए, क्योंकि योग माना, एक दूसरी डेफिनेशन देंगे, योग माना भगवान के साथ रहना। और भगवान के साथ रहने का सुख, उससे बड़ा सुख स्वर्ग में भी नहीं होता है। तो हर आत्मा के मन में श्रेष्ठ इच्छा रहनी चाहिए, अब हम भगवान के साथ रहें। मैं एक बात सुनाया करता हूँ सबको, आपने सुनी होगी, जो भी सेवा में आए हैं विशेष, और सभी भाई बहने जरा इस बात को दो चार बार याद करके देखें एक दो दिन। बाबा साकार में कहते थे, तुम देवताओं के साथ दो युग तक रहे, फिर मनुष्यों के साथ भी तुमने दो युग तक रहकर देख लिया, अब थोड़ा सा समय भगवान के साथ रहो। यह अवसर मिला है ज्ञानी आत्माओं को। संसार में तो कोई इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता, साधु संत महात्मा विद्वान आचार्य भी इसको बोल भी नहीं सकेंगे कि भगवान के साथ रहो। केवल वही कहता है अब मेरे साथ रहो, रहेंगे। ये बात याद करना रोज। और हमारे पास ही वो सद्विवेक है कि हम भगवान के साथ रह सकते हैं, औरों को तो उसके साथ रहना भी नहीं आता। ठीक है ना ये बात? ये अभिमान की बात नहीं, ये सद्विवेक की बात है, सत्य ज्ञान की बात है कि हम ये जानते हैं वो कहाँ रहते हैं, हमें भी कहाँ रहना है मन और बुद्धि से। संसार के लोगों ने तो क्या कह दिया, वो सब जगह है तो उसके साथ ही तो रहते हैं, उसके साथ रह के भी बड़े दुखी हैं। तो उनसे कोई पूछे सुखी कब बनोगे भाई, सब जगह भगवान है सुरेश भाई, सब जगह भगवान है, उसके साथ रहकर भी तुम्हारा बुरा हाल तो अच्छा हाल कब होगा। तो हम योग को इस तरह समझें, बाबा के साथ रहना। दूसरी योग की परिभाषा जिसमें योग युक्त होने का सार समाया हुआ है, साकार महावाक्य है ये भी, राजयोग माना मेरा कुछ भी नहीं। ये गहन परिभाषा हो गई। यानी वो आत्माएं जो इस स्थिति में स्थित हो जाएं कि मेरा कुछ भी नहीं, श्रेष्ठ योगी बन सकते हैं। बोलो माताएं हो जाएंगी इसमें स्थित, बहने बोलो मेरा कुछ भी नहीं, आपका घर बार और बच्चे उनका क्या होगा फिर, वो बाबा के। अच्छा माताएं बहुत बुद्धिमान है, अच्छा बच्चे सब उसको दे दो और हम फ्री हो जाएं। परंतु ये होना सहज है या कठिन है? एक माता का अभी फोन आ रहा था, मेरे दो बच्चे पति मैं सब ज्ञान में चलते हैं पर वो तीनों मुझे बहुत तंग करते हैं। मैंने कहा अभी पैदा तुमने किए तो तंग करने पड़ोसी को जाएंगे। मैं भी उससे हंस रहा था, हंसी बहुत कि क्या करूं, मुझे बहुत तंग करते हैं। अभी बाबा से मिलके गए हैं शिवरात्रि पे और मुझे बहुत तंग करते हैं, मैं बहुत तंग होती हूँ। मैंने कहा बस इस शब्द को यदि चेंज कर लो, मैं बहुत तंग होती हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, इसको चेंज कर दो, वो आपको तंग करें और आप तंग ना हो, वो आपको परेशान करें और आप श्रेष्ठ स्वमान में रहना सीख लो, तो ये परिस्थिति बदल जाएगी। तो मनुष्य दूसरों को बदलना चाहता है, परंतु बदलना है अपनी स्थिति को, अपने संकल्पों को, अपने विचारों को, तो महान हो जाएंगे और ये समस्याएं लगेंगी नहीं। तो मेरा कुछ भी नहीं, सारा संसार किसमें उलझा हुआ है, मैं और मेरा, और तेरा भी साथ में, जिसको तेरा मेरा कहते हैं लोग, तू तू मैं भी कहते हैं, इसमें उलझा है सारा संसार। और जो ज्ञानी आत्माएं हैं जिनके पास सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, वही कर सकते हैं सब कुछ तेरा। इसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ये हो गया बहुत सूक्ष्म समर्पण भाव, ये समर्पण भाव है। समर्पण भाव रखने वाले ही सहज योगी बन सकते हैं। और बाबा का बहुत ही गहरा महावाक्य है, उस पे आप बहुत अच्छा चिंतन रखें। जिस क्षण तुम संपूर्ण समर्पण हो जाते हो, उसी क्षण संपूर्ण बन जाते हो। बहुत गहरी डेफिनेशन है संपूर्ण समर्पणता। ये नहीं कि हम आ गए यहां मधुबन में, यहां सरोवर में रहने लगे तो हम समर्पित हो गए हैं, ये तो मोटा रूप है समर्पणता का। मेरा मेरा बोलो, कुछ भी नहीं। इस सूक्ष्मता से इसको चेक करेंगे, मेरा विचार सबसे सूक्ष्म बात, मेरी बुद्धि, बुद्धि का अहम, मेरे संस्कार, ये तो मोटी बात हुई, मेरे बच्चे, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरी धन संपत्ति, मेरा मकान दुकान, मेरा व्यापार, ये तो मोटी समर्पणता है। इसको तो कोई भी कर दे, लगन लगे, वैराग्य हो, छोड़ो सब कुछ, लेकिन सूक्ष्म है मेरे विचार, मेरी बुद्धि का अहम, मेरी इच्छाएं, मेरे संस्कार, मुझे भी कुछ चाहिए, मैं भी कुछ हूं, इन सब का समर्पण, देहभान का समर्पण, ये सूक्ष्म पुरुषार्थ की बातें हैं। इस पर सभी ध्यान देंगे, एक एक चीज को देख लें, देखो कितनी सूक्ष्म गति होती है। हम रास्ते में चल रहे हैं, एक पेन पड़ा हुआ मिल गया 5 रुपए का, हमने उठा लिया, रास्ते में पड़ा था, उसको अपने पास रख लिया, 2 दिन उससे लिखा, बड़ा अच्छा चलता है तो 5 रुपए का है, लेकिन 3रे दिन वो जेब से निकल गया। अब कितने संकल्प चलेंगे, 5 रुपए के नहीं, 5 लाख रुपए के चल सकते हैं, हाय मेरा पेन खो गया, 2 दिन पहले वो मेरा था ही नहीं, 2 दिन वो मेरा हुआ और उसमें हमारी आसक्ति हो गई। जिस चीज को भी हम मेरा समझ लेते हैं, उससे हम गहराई से जुड़ने लगते हैं, आसक्त होने लगता है मन, आत्मा उसमें चली जाती है। इसे निकलना है और इसका तरीका है, ये सभी साधन निमित्त मात्र हैं, केवल यूज करने के लिए है। मान लो हमारे पास कारें हैं, बाइक्स है, हम उनका यूज कर रहे हैं, सेवाओं में जाते हैं, यहाँ वहाँ यूज हो रहा, वो बहुत अच्छी बात, लेकिन मान लो कल तेल ही न मिले और वो खड़े रहें और उनको देख देख कर हम दुखी होते रहें, फायदा होगा? एक समय आएगा ना, तेल तो होगा दुनिया में, लेकिन क्या नहीं होगा, ट्रांसपोर्टेशन खत्म हो जाएगा, ट्रक ही नहीं चलेंगे, अर्थक्वेक्स जब शुरू हो जाएंगे, भूकंप जब शुरू हो जाएंगे, सड़कें आदि सब टूट फूट जाएंगी, तेल बहुत निकाल रहे होंगे अरब वाले, लेकिन भेजें कैसे, ये स्थिति बहुत भयानक हो जाएगी, सागर में इतनी उथल पुथल हो जाएंगी कि जहाज भी नहीं चल पाएंगे। तो साधन सब होंगे लेकिन यूज नहीं होगा, धन होगा पर धन को खा तो नहीं सकेंगे ना, अन्न नहीं होगा, सब्जियां नहीं आएंगी, दूध नहीं मिलेगा, बच्चों को कष्ट होने लगेगा जो दूध पे जीते हैं। तो ऐसे में जिन्होंने अपने में ये निमित्त भाव धारण कर लिया होगा, मेरा नहीं, ये सब जस्ट जीवन को चलाने के साधन मात्र हैं, हम अलग हैं, हमारी स्थिति इन पर आधारित नहीं है। वो उस टाइम भी सुखी रहेंगे, बाइक नहीं तो पैर तो हैं, चलेंगे, पैरों में और ताकत आ जाएगी, और जो सोचेंगे हाय मेरी बाइक, उनके पैर और कमजोर हो जाएंगे, अब कैसे चलूं। साधनों की अधीनता मनुष्य को कष्ट देगी, इसलिए मेरा, बोलो माताएं बोले मेरा, देखो अपने घर को सारे को यहीं से और सोचो ये मेरा नहीं है, किसका है, ये बाबा का यज्ञ है और बच्चे भी ये बाबा का परिवार है, ये मेरे बच्चे हैं, ये भावना कब निकलेगी, रहेंगे तो वो आपके ही, कहीं जाएंगे नहीं, लेकिन इसके बदले क्या करना है, ये नहीं, एक और संकल्प करना पड़ेगा पहले। ये सब आत्माएं हैं, इस जन्म से पहले हो सकता है वो मेरी माँ हो, वो मेरा बाप हो, जो अब एक छोटा बच्चा बनकर आपके घर में जन्मा है, पूर्व जन्म में वो कुछ और हो, तो आत्मिक भाव बढ़ाने से ये मेरापन का जो लगाव है ये धीरे धीरे समाप्त होता जाएगा। ये एक दिन में नहीं होता, ये धीरे धीरे समाप्त होगा। और फिर क्या होगा, कई लोग इस बात को ठीक से समझते नहीं है, ज्ञानी आत्माएं भी, वो सोचते हैं इससे तो जीवन में रूखापन आ जाएगा, हम बच्चों की संभाल कैसे करेंगे। नहीं, इससे हमारी आत्मिक शक्तियां बहुत बढ़ेंगी, हमारे अंदर प्यार की शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। प्यार जब मोह में बदल जाता है तो प्यार की शक्ति आधी भी नहीं रह जाती, और प्यार यदि आत्मिक प्यार में बदल जाए तो प्यार की शक्ति 100 गुना हो जाएगी। बच्चे को आप प्यार से देखेंगे ही उसकी पालना होगी, आपकी प्यार की दृष्टि उसका विकास करेगी। इस सूक्ष्म गति को समझ लेना है। तो एक चीज को छोड़ने से दूसरी असली चीज बहुत शक्तिशाली होती है, और जिसकी आज बहुत जरूरत है। तो सब अपने को चेक करेंगे, मेरी ड्यूटी या मेरा डिपार्टमेंट या मेरे वस्त्र या मेरे साधन सब हैं तो सही, कपड़े बहुत हैं सबके पास और साधन भी बहुत हैं, पैसा भी होगा, लेकिन ये सब बस जीवन चलाने के साधन हैं। कल ये ना हो तो भी हम बहुत सुखी और खुश रहेंगे। ऐसी मनोस्थिति तैयार कर लेनी है। और ये गुह्य रहस्य सभी को जान याद रखना है, जिनकी स्थिति श्रेष्ठ होगी उन्हें आगे आपको बोलना है, भाई बोलेंगे उन्हें सब कुछ मिलता रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि उनको दवाई चाहिए तो दवाई नहीं मिलेगी, जैसे आजकल हो गया ना, ये जो स्वाइन फ्लू फैला है तो डॉक्टर बता रहे कि दवाई नहीं है। हमारे हॉस्पिटल में भी केवल 40 टेबलेट आई हैं, केवल 40। अभी केस आने लगे तो क्या करेंगे वो लोग, चेकअप करने के लिए जोधपुर में है, वहां अभी इतना काम आ रहा है तो बेचारे बॉम्बे भेज रहे हैं सैंपल। अब इतने उसकी जांच होके आएगी, इतने पेशेंट का क्या हाल होगा, अगर डॉक्टर को पूरा पता ना चले तो मर जाएगा इतने पेशेंट। तो ऐसी परिस्थिति उन लोगों को नहीं आएगी जो अच्छी स्थिति वाले होंगे, उन्हें दूध भी मिलेगा, चाय चाहिए तो वो भी मिलेगी, पानी के भंडार भरपूर रहेंगे, कोई कमी नहीं होगी। इसलिए जिन्होंने अपनी बुद्धि साधनों से हटाकर श्रेष्ठ स्थिति बनाने में लगाई होगी, साधन उनके पीछे पीछे चलेंगे। और जिन्होंने, अब इसका उल्टा कर दो, साधना छोड़कर साधनों के पीछे सब कुछ लगा दिया, साधन उनसे दूर जाते जाएंगे और साधना की कमी के कारण उनको बहुत कष्ट होता रहेगा। इसलिए देखो, स्वाइन फ्लू छोटी सी बात हुई, एक आधा केस होता है तो भी लोग कितने घबरा जाते हैं। अभी से मधुबन में भी 3 सेवाधारियों को हो गया, बेचारों को भेज दिया, घर ही जाओ, फैल न जाए यहाँ कहीं। एक परिवार के 5 लोगों को इकट्ठा हो गया, बड़ी मुश्किल हो गई ना उनको तो, क्योंकि ये बहुत फैलता है। खांसी आई, मुख से निकला, हवा में फैल गया, बहुत जल्दी दूसरों को आता है। इसलिए लोग मास्क पहनते हैं, लेकिन आप सब क्या करें, मास्क पहनेंगे तो जैनी बाबू बन जाएंगे, इतना अच्छा तो लगेगा अभी नहीं। क्या करें आप सभी, नहीं मैं एक छोटी सी विधि बता रहा हूँ, रोज दिन में कम से कम प्रतिदिन 2 बार पानी को चार्ज करके पीना, उठते ही पी लो, सोते वक्त पी लो, उठते ही तो सब पानी पीते ही हैं, जिसको आदत नहीं वो आधा गिलास तो पीना शुरू करे, गर्म पानी रहता ही है तैयार। पानी को दृष्टि दो, 7 बार संकल्प करो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। ये पानी चार्ज हो गया और ये बहुत पावरफुल दवाई बन गया, हर वायरस को रोकने में समर्थ, आएगा ही नहीं आपके अंदर। रोज दो बार पीते रहो, मुक्त रहेंगे सदा। और इसे और फायदा ये भी है, जो मोबाइल बहुत सुनते हैं वो भी अगर चार्ज करके पानी पिएंगे तो इसका जो निगेटिव इफेक्ट होता है वो भी नहीं होगा। तो एक बहुत अच्छा साधन बाबा ने योग का हम सबको दिया है, तो इसका प्रयोग सभी बहुत अच्छी तरह करते रहे। तो हमें योग युक्त जीवन बनाना है, तो समर्पण भाव अपनाते चलें, और अभी से ये बहुत अच्छी फीलिंग बढ़ा दें। कौन सी बताई, फिर एक बार बोल दो, फिर आगे चलें। मेरा कुछ भी नहीं। अब इसमें एक बहुत अच्छी चीज की प्रैक्टिस सबको करनी चाहिए, बड़ी नेचुरल बना देनी है उसको। मेरा हर कर्म तुम्हारे लिए, बहुत अच्छी फीलिंग में समाए इसको। मेरा हर कर्म तुम्हारे लिए, तो क्या होगा? अब जरा गहराई से विचार करना। तो पूरा कल्प हमारा, हर कर्म किसके लिए हो जाएगा? हाँ, बाबा तो सब जगह नहीं होगा, फिर हमारा हर कर्म फिर विश्व कल्याण के लिए होता रहेगा। हर जन्म 5000 साल प्रतिपल हमारे कर्म दूसरों के कल्याणकारी होते जाएंगे, और जिसके कर्म दूसरों के लिए कल्याणकारी होते हैं उसका जीवन सुखों से, खुशियों से, शांति से, सफलता से भरपूर रहता है। इसे अभी से ये भावना बहुत नेचुरल और प्रबल करते चलें। मेरा हर कर्म तुम्हारे लिए, पसंद है माताओं को? और जो बहुत अच्छे सूक्ष्म पुरुषार्थी हैं वो क्या संकल्प करेंगे इसके साथ, बोलो और गहराई में। मेरा हर संकल्प तुम्हारे लिए, मेरी ये बुद्धि तुम्हारे लिए, बहुत अच्छी ये प्रैक्टिस हो जाएगी। बुद्धि भी हमें बाबा ने दी या नहीं? या हम लाए थे अपने घर से, बोलो क्या अनुभव है? बाबा ने दी है, हमें तो पता है, सबको पता, मुझे बहुत अच्छी तरह पता जब हम आए हमारी बुद्धि कैसी थी और बाबा ने उसको कितना रिफाइन किया है, डे बाय डे डिवाइन किया है। तो बुद्धि तुमने दी है और ये बुद्धि तुम्हारे लिए, माना भगवान को तो नहीं चाहिए हमारी बुद्धि, उसके महान कार्यों को संपन्न करने के लिए, और उसके महान कार्यों को वही बुद्धि संपन्न करती है जो निरहंकारी बुद्धि हो, जिसमें मैंपन का पूरी तरह से अभाव हो, और हमारा मन यानी हमारा एक एक संकल्प तुम्हारे लिए। इससे आपको अपने व्यर्थ को, निगेटिव संकल्पों को रोकने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। मेरा हर संकल्प तुम्हारे लिए, बाबा के लिए। तो कोई भी संकल्प उठाओ, थोड़ा सा ध्यान दे दे, क्या ये संकल्प प्रभु अर्पण करने योग्य है? क्या इस संकल्प को शिव बाबा स्वीकार करेंगे? तो संकल्प बदलते जाएंगे। हम सब जानते हैं कि बाबा को कौन से संकल्प प्रिय होंगे, व्यर्थ संकल्प तो वहां तक पहुंचेंगे भी नहीं। यहाँ भी अगर बाबा आ जाए तो हम सब देखते हैं, बाबा जब आते हैं कितना सुंदर माहौल होता है, किसी का एक भी संकल्प व्यर्थ नहीं होता है। इस बार आप में से किस किस ने जान लिया था कि जैसे ही गुलजार दादी आकर बैठी और बाबा एक दो मिनट के बाद ही आ गए, किस किस ने जान लिया था? बहुत अच्छा, पता चला था माताओं को। मुझे तो जब बाबा की दृष्टि तेज घूमिए गुलजारदारी बैठे बगुलजारदारी ऐसे दृष्टि तेज घुमा रही, टीवी पास ही है बड़ी स्क्रीन देखा, और ये तो बाबा चेहरे की चमक तेज वो बाबा का आ गया था। फिर जब बाबा ने देखा कि ये तो समझ ही नहीं रहे न गीत वाले न लाइट वाले तो फिर आंख बंद करके थोड़ी देर के बाद खोल दी, वो समझ गया आ गया बाबा, पर बाबा पहले ही आ चुका था। बड़ा आनंद आया उस दिन बाबा को देखकर, आपको भी आया होगा। मेरा तो मन मग्न हो गया था, मेरा तो मन वहीं गाने लगा था कि वाह प्रभु तेरी लीला। उसको समझना हरेक के वश की बात नहीं है, वो चाहे तो चुटकी बजाते ही संसार को बदल दे, बदल सकता है या नहीं? वो चाहे तो सागर पर एक कटु दृष्टि डाल दे और पानी सूख कर भाप बनकर उठ जाए, लेकिन वो प्रकृति के नियमों में बाधा नहीं डालता। जो नियम से जिस तरह चलना है उसी तरह चलने देता है। और कई बाबा के बच्चे उसकी इन शक्तियों को पहचानते नहीं हैं। उसका कारण भी आप सब समझते होंगे, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं ताकि किसी के मन में भी संशय न रहे। जिन्होंने ज्ञान लिया है लंबे समय से उन्हें मालूम होगा कि ध्यान में जाने से ब्रेन वीक होने लगता है। एक कहानी सुना देता हूं आपको सच्ची, और आप में से कईयों को याद आ जाएगी। शांतिवन में, क्योंकि आप तो नहीं रहते उन दिनों में हम रहते हैं, तो दादी थी जब, प्रकाशमणि दादी, कितने साल हो गए दादी को गए? 7-8 हो रहे, और उससे 7-8 साल, 5-6 साल पहले। तो एक दिन मुरली सुनाते हुए, दादी तब बिल्कुल ठीक थी, मुरली अच्छी सुना रही थी, तो कोई पॉइंट आई, सभा तो उतनी थी 15-16 हजार, तो दादी ने कहा गुलजार जाओ बाबा से पूछ के आओ इसका उत्तर। वो स्पीकर पे तो सुनते हैं ना मुरली, दादी के वहां भी है, और दादी बड़ी खुश, अब गुलजार दादी जाएगी और इस प्रश्न का उत्तर लेकर आएगी। तो वो तो गई नहीं ध्यान में, क्योंकि ध्यान में जाना अपने हाथ में तो नहीं होता, हो तो बाबा बुलाता है। 3-4 दिन के बाद बाबा आए थे, 3 दिन के बाद ही शायद आए, तो बाबा ने इस बात का उत्तर दिया कि दादी को तो भाई बड़ा प्यार है गुलजार दादी से, और अधिकार भी है, वो मालिक है, वो तो ठीक कहती है कि गुलजार अभी जाओ ध्यान में और बाबा से पूछ के आओ, लेकिन ध्यान में जाना माना आधी मृत्यु। आया किसी को याद? अव्यक्त बाबा ने उत्तर दिया था, इसलिए बार बार बाबा नहीं बुलाते। तो बाबा जानते हैं कि दादी बहुत हजारों बार ध्यान में गई है, हजारों बार, तो ब्रेन पर इफेक्ट तो आता है। भले उनकी अपनी योग की शक्ति, प्योरिटी की शक्ति, दादी की अपनी सुंदर है बहुत, तो वही एक आत्मा ब्रह्मा बाबा के बाद ऐसी रही, शिव बाबा की इन सब चीजों को इधर समाती रही, एकोमोडेट कर, कहते हैं इसको इंग्लिश में, एकोमोडेट करती रही, औरों के बस का नहीं। तो बाबा ने ध्यान में न लेकर दादी को डायरेक्ट वैसे ही प्रवेश कर लिया जैसे ब्रह्मा के तन में प्रवेश करते थे। इसलिए बहुत डिविनिटी थी, क्योंकि बाबा का रथ है, उसका ध्यान तो बाबा को रखना ही है पूरी तरह से, भाई ब्रेन कमजोर ना हो, ब्रेन शरीर को चलाता है, आयु पर इसका इफेक्ट होता है। बहुत बड़ी सेवा गुलजार दादी के द्वारा हुई है, आप सबको पता है, हमने तो पहले दिन से देखा है कितनी महान सेवा। ये नहीं कि केवल बाबा उनके तन में आए, यही महान सेवा है तो यही सबसे बड़ी। लेकिन आप सोचो दादी की तबीयत ढीली है, मान लो बुखार है दादी को, और बाबा के आने का प्रोग्राम है, और वो अपने बुखार को भी अवॉइड करके वहां के बैठती हैं ताकि बाबा आए, कितना बड़ा बलिदान है ये। और जब फिर बाबा का प्रोल समाप्त हो जाता है तो बुखार बहुत तेज होता है और दो दिन तक उन्हें होश भी नहीं रहती है। तो कितनी बड़ी त्याग और बलिदान की बात है ये। इसको देखकर सोचे उनकी सेवाएं कितनी जबरदस्त रही हैं। 47 ईयर्स होने जा रहे हैं। तो हम सभी दादी को तो बहुत थैंक्स देते ही हैं। बाबा तो कहा करता है जिसका रथ मैं किराए पे लेता हूँ उसको किराया कितना दे देता हूँ, पता है ना। ब्रह्मा बाबा के लिए बाबा बहुत कहते थे, तो बाबा उनको किराया तो क्या कहेंगे, भरपूर कर देगा। वो तो श्रेष्ठ भाग्य के धनी हैं ही। तो हम सभी अपने को श्रेष्ठ योगी बनाएंगे। बाबा की पालना का रिटर्न हम सबको देना है। आज थाना वरदान में क्या है, फरिश्ता बनकर दुखी आत्माओं के दुख दूर करेंगे, समस्याओं में घिरी उलझी आत्माओं को उनसे मुक्त करेंगे, क्योंकि संसार में ये सब बहुत हाल बिगड़ता जा रहा है। मैं जो आजकल देख रहा हूँ दो चीजें बहुत बिगड़ रही हैं, मानसिक इफेक्ट, हर एक के मन पर बुरा इफेक्ट, दूसरा संबंधों में टकराव। अरे ऐसी ऐसी समस्याएं आती हैं। अभी भी मैं नीचे से आया हूँ थोड़ी देर पहले, एक परिवार आया, कहा भाई जी अपने बच्चे की शादी कराई मैंने, बहू आई है, एक बच्ची हुई है अभी अभी, और बहू इतना गुस्सा करती है कि हमारा तो घर में जीना मुश्किल कर दिया है। मैंने कहा आपसे लड़ती है, अब तक तो कहते सास बहुओं से लड़ती है। अच्छा बहू सा आपसे लड़ती है, कहा मुझे तो चुप रहना पड़ता है पड़ोस तक, वो कुछ नहीं सोचती पड़ोसी सुनेंगे, जोर जोर से बोलती है, और कहा मेरा लड़का इतना तंग हो गया है, नींद भी नहीं आती, छोटी सी आयु अभी शराब पीनी शुरू कर ली, सोने के लिए शराब पीता है, मैं क्या करूं। लेकिन यही पॉजिटिव बात, ये निगेटिव बात उनको ज्ञान में लाई, अभी आ रहे हैं बस एक दो मास से। तो ये परिस्थितियां, दो परिस्थितियां, मानसिक इफेक्ट, संबंधों में टकराव और मनुष्य के अंदर बढ़ती हुई वासनाएं, ये सब जीवन के सुखों से मनुष्यों को वंचित करती जा रही हैं। इसलिए बाबा चाहते हैं मेरे कुछ बच्चे निष्काम भाव से विश्व की सेवा करें। ऐसा कह सकते हैं हम कि भगवान को भी श्रेष्ठ योगियों की जरूरत है इस समय, जो उसका ईमान कार्य करें, क्योंकि जो दुखी हैं वो भी उसके बच्चे हैं, वो भी कहते हैं भगवान को ही पुकारते हैं कि कुछ मदद करो हमें। और बाबा की बात याद कर ले फिर से, दुखी होकर संसार के लोग बाप को पुकारते हैं और बाप बच्चों को याद करते हैं कि इन्हें सकास दो। तो हम अपने महान कर्तव्यों को पहचाने, और जिनको श्रेष्ठ योगी बनना है वो व्यर्थ की बातों से मुक्त रहकर, व्यर्थ के संकल्पों को एक तरफ रखकर, लोग क्या कह रहे हैं इस बात से ऊपर उठकर श्रेष्ठ योग की तपस्या में लगें, क्योंकि लोग तो कुछ ना कुछ बोलेंगे। आप अच्छा योग करेंगे तो चार लोग बोलने वाले मिल जाएंगे, चले हैं योगी बनने, देखेंगे कितना योग करते हैं, अरे हमने बहुत देखे ऐसे योग करने वाले, फलाना करता था उसका बुरा हाल हो गया, उसने किया था उसका भी बुरा हाल हो गया, इनका भी नशा दो चार मास में उतर जाएगा, कहते हैं ना ऐसे बहुत लोग। लेकिन हमें एक लक्ष्य पर दृढ़ रहना है। देखो मुझे ये बात, अब ये लास्ट बात आपको सुना दूं। योग तो हम अच्छा करते ही थे और लोग कुछ ना कुछ बोलते थे, हमारा संगठन तब छोटा था, छोटे संगठन में सब एक दूसरे के समीप ज्यादा रहते हैं ना, समझो 15-20 भाई, इतनी बहनें बस, इतने थे। तो अव्यक्त बाबा एक बार आए। निर्मल शांता दादी पहली बार विदेश गई थी, तो विदेश जाना बहुत बड़ी बात थी, वो लौटी तो बाबा आए, उनसे मिले तो एक बहुत अच्छी बात कही कि एक ऐसा ग्रुप तैयार करो जो योग अभ्यास करें बहुत अच्छा, जो श्रेष्ठ पुरुषार्थ करें बहुत अच्छा, और उसमें बाबा ने एक बात जोड़ी, जो निंदा ग्लानी मान अपमान की बातें सुनकर पुरुषार्थ को छोड़े नहीं। तब हमें, अभी हम बड़े तो नहीं थे, छोटे थे, ख्याल आया, समझ में आया कि जो मनुष्य कुछ ऐसा अच्छा पुरुषार्थ करता है लोग उसके बारे में कुछ ना कुछ बोलेंगे अवश्य, लेकिन मनुष्य को निरंतर आगे बढ़ना चाहिए। हमें बहुत ताकत मिल गई ये बात सुनते, क्योंकि हम भी सोचते थे अरे लोग बहुत बोलते हैं, पता नहीं हम गलत तो नहीं है, छोटे थे ना तो इतना विवेक ब्रॉड तो नहीं था, हम सोचते थे कहीं हम कुछ गलती तो नहीं करते, योग भी छुप छुप के कर लेते थे। उन दिनों ये नई रस्म थी कि झोपड़ी में योग करना है या बाबा के कमरे में योग करना, बाबा के कमरे में कोई नहीं जाता था, मैंने ही जाना शुरू किया था सबसे पहले चुपचाप, फिर संतरी दादी होती थी वो बैठने लगी, बस हम दो ही बैठते थे, अंधेरा भी वहां होता था, फिर एक बल्ब लगवा दिया उन्होंने कि यहाँ एक छोटा सा बल्ब भी लगा दो बाबा के कमरे में, फिर शुरू हुआ, फिर तो वो अब तो आप जानते हैं तीर्थ बन गया। तो हमेशा ध्यान रखना है, सुनना उसे ही पड़ता है जो कुछ करता है, जो कुछ करता ही नहीं उसे कोई क्या कहेगा, कोई कुछ बोलेगा? एक बच्चा पढ़ता ही नहीं, स्कूल जाता नहीं, उसे कोई कुछ कहेगा? जो स्कूल में जा रहा है उसे गलती हो रही है, उसको लोग बोलेंगे। जो व्यक्ति काम कर रहा है उसे गलती भी होगी, सुनना भी पड़ेगा, वो अपनी गलतियों को करेक्ट भी करेगा और फिर आगे बढ़ेगा। इसलिए वो मनुष्य जो बात ही सुनकर अपने श्रेष्ठ पुरुषार्थ को छोड़ न दे, जो लोगों के कमेंट सुनकर अपने महान लक्ष्य को भूल न जाए, जो निंदा सुनकर अपने कदमों की गति को धीमा न कर दे, वही अपनी मंजिल पर पहुंचता है। इसलिए ऐसा अपने अंदर दृढ़ संकल्प भरें कि अब ये अव्यक्त पार्ट भी समाप्ति की ओर है, पहला फेज चला साकार, दूसरा अव्यक्त, अब तीसरा चलेगा वो और सुंदर होगा, जिसको आप जानते हैं मुरलियों से, साक्षात्कार का पार्ट, जय जयकार का पार्ट। तो हम साक्षात्कार करने वाले नहीं, कराने वाले बने, ऐसा सभी लक्ष्य बना के बहुत अच्छा योग करेंगे। ओम शांति।
में तू।